جزاكم الله. الحمد لله سلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. تو سورہ مومنون کی جو تفسیر ہماری اس والی کلاس کے اندر چل رہی ہے، تو اس میں ہم آیات نمبر 101 سے لے کر کے 100 کا ترجمہ پڑھ چکے تھے، اور قرآن تفسیر اس کی کلاس میں مکمل کر لیا تھا. معارف و مسائل آج ہم پڑھنا شروع کر رہی ہیں. تو معارف و مسائل میں حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحقیق یہاں پر نقل فرمائی ہے، اور اس میں وہ چیدہ چیدہ آیات جو ہیں وہ ان کو لیتے ہیں اور ان کے معارف و مسائل کو کھولتے ہیں. تو خلاصہ تفسیر والا فارمیٹ یہاں پر نہیں ہوتا، بلکہ ان کا یہ اپنا ایک الگ فارمیٹ ہے. تو اس میں سب سے پہلے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، اس آیت کے اس قطعے کو حضرت نے کھولا کہ جس کا ترجمہ یہ تھا کہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی پھر نہیں ہوگا کوئی نسبی تعلق ان کے درمیان. ٹھیک ہے، تو اب اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قیامت کے روز سور دو مرتبہ پھونکا جائے گا، یعنی نفخہ پہلے سور کا یہ اثر ہوگا کہ سارا عالم زمین و آسمان اس کے درمیان ہے، فنا ہو جائے گا، اور نفخہ ثانیہ سے پھر سارے مردے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ایمان کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے کہ سور پھونکا جائے گا اور دو مرتبہ پھونکا جائے گا. تو پہلی دفعہ کیا ہوگا کہ جیسے کہ اس کی تصریح اور یعنی اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہمیں احادیث سے پتہ چلتی ہیں کہ جب سور کی آواز شروع ہوگی تو یہ ابتدا میں ایک ہلکی آواز ہوگی، اور جو اس وقت انسان موجود ہوں گے ان کو یہ آواز آنی شروع ہوگی نا، تو یہ پہلے تو ایک عام سی آواز ہوگی، پھر اس آواز کی انٹینسٹی جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی، حتیٰ کہ یہ اتنی بڑھ جائے گی کہ انسانوں کو اس سے تکلیف ہونی شروع ہو جائے گی. جیسے ہوتا ہے نا، ایک آواز زیادہ بڑھ جائے تو سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور تکلیف بڑھتی چلی جائے گی حتیٰ کہ لوگ جو ہیں وہ مرنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے آہستہ آہستہ ساری چیزیں جو ایگزسٹ کرتی ہیں، اب جو جاندار چیزیں یعنی جو حیوانات میں شامل ہوتی ہیں وہ مر جائیں گی، نباتات میں جو شامل ہوتی ہیں وہ جیسے جڑ سے اکھڑ جائیں گی یا ان کی موت واقع ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے پھر جو جمادات ہیں، جو فکس چیزیں ہوتی ہیں جیسے پہاڑ اور پتھر اور جو بھی سٹرکچرز ہیں، بلڈنگز وغیرہ ہے نا، تو وہ سب بھی جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ جائیں گی. اور پہاڑوں کا جو ہے وہ ذکر بھی ہے سورہ القارعہ کے اندر، جیسے ٹھیک ہے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، وہ ایسے ٹوٹ کر کے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور اتنا یعنی ان کے ریزے اتنے باریک ان کے ہو جائیں گے کہ جیسے کہ دھنی ہوئی روئی ہوا میں اڑتی پھرتی ہے، تو پہاڑوں کے ایسے ٹکڑے ہو جائیں گے. تو اب اس کی کیا ایگزیکٹلی شکل ہوگی ہمیں تو نہیں معلوم، لیکن کچھ تحقیقات کی نظر میں اور اسپیشلی جو ہمارے شیخ مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم ہیں، تو جو ہے وہ انجینئر بھی ہیں، تو وہ کبھی سائنٹیفک باتیں بھی کہ سائنٹیفک طریقوں سے بھی باتوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے بیانات کے اندر. تو ان کی ایک اس طرح کی ایک تشریح تھی کہ جس کی بنیاد پر نا اس حدیث کے بھی دل میں کافی زیادہ اور تفصیل سورٹ آف بیٹھ گئی. وہ تو سورہ واقعہ کی تفصیل کر رہے تھے، تو اس میں ایسی بات فرمائی تھی کہ हर ऑब्जेक्ट जो अल्लाह ताला ने जो भी चीज बनाई है ना, फिजिकल मैटर, मटेरियल चीज जो बनाई है, तो हर मैटर की जो चीज होती है तो उसके अंदर जो है ना वो यानी वो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है उसका, ठीक है ना, उसके वो बेस्ड ऑन एटम्स होता है ना। लिविंग जो बॉडीज होती हैं इनको हम लिविंग क्रिएचर्स कहते हैं, तो उनके जो जो इस लेवल की चीज होती है उसको उसको सेल कह देते हैं, सेल्स, ठीक है। और जो नॉन लिविंग होती है उनको एटम कह देते हैं। तो अब एटम के अंदर भी जो है वो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के जो है वो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, उसी तरीके से सेल के अंदर भी एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और उसके अंदर जो है वो पूरा एक सेल का एक स्ट्रक्चर होता है। तो हर चीज जो अल्लाह ताला ने बनाई है ना, तो उसके जो यूनिट है वो सेल्स हैं या एटम्स हैं, ठीक है। अब इन सेल्स और एटम्स के अंदर मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है ना, ऑसिलेशन हो रही होती है, चीजें चल रही होती हैं, ठीक है, मूव कर रही होती हैं चीजें। तो जब ये मूवमेंट होती है ना, तो हर चीज के अंदर जो जो उससे मूव हो रहा होता है उसकी वजह से हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है ना, हर चीज की एक अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। उस फ्रीक्वेंसी को साइंसदानों ने नाम दे दिया नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यानी हर चीज की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। और वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो इंसान की, इंसान के जो 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 सेल्स हैं उनकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, जो दरख्त के सेल्स हैं उनकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, जो पहाड़ के सेल्स हैं या एटम्स हैं उनकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, जो जो लकड़ी के ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, जो आपने मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं लोहे के, तांबे के, स्टील के, प्लैटिनम के, गोल्ड के, सिल्वर के, हर चीज के अंदर एटम्स मौजूद हैं। तो हर चीज के अंदर एक फ्री, हर चीज की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो अब ये जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी हर चीज के अंदर होती है, ऊपर से अगर बाहर से अप्लाइड फोर्स, एक पेरियोडिक फोर्स अप्लाई की जाए जिसकी अपनी भी एक फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है, तो वो जो फ्रीक्वेंसी बाहर की एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स है उसकी जो फ्रीक्वेंसी, जब वो फ्रीक्वेंसी किसी चीज के ऊपर एक्ट करती है, ठीक है, किसी चीज के ऊपर एक्ट करती है, तो उसके अपने अंदर की जो फ्रीक्वेंसी होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उससे एक वक्त में जा करके वो कभी भी कर सकती है या उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के करीब पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये तो मैं लेमेंस बेसिकली आपके सामने पिक्चर रख रहा हूँ, वैसे मुझे ज्यादा बहुत ज्यादा तहतीक है नहीं, आप लोग में से बहुत से इंजीनियर्स भी हैं उनको ज्यादा अच्छी तरह पता होगा, हो सकता है आपको ऑल्टरनेटिव व्यू भी इसका या कोई और एक्सप्लेनेशन भी इसकी पेश कर दें, ठीक साथ आपके सामने ये जिस डरते डरते जो है ना वो अपनी एक यानी थ्योरी पेश कर रहा है समझ में, ठीक है। तो बाहर की या अपनी तो थ्योरी नहीं, हजरत के उस बयान की बुनियाद पर ही ये पूरी की पूरी कहानी बनी है बेसिकली दिमाग के अंदर। तो जो बाहर की फ्रीक्वेंसी जो है जब किसी के, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर की नेचुरल करीब हो जाती है ना, तो इस फिनोमेना को रेजोनेंस कहा कह दिया जाता है, रेजोनेंस, ठीक है। तो ये जो रेजोनेंस होती है ना, इससे क्या होता है कि वो जो चीज होती है ना उसके अंदर एक ऑसिलेशन पैदा हो जाती है, ठीक है ना। वो जो चीज, वो जो सिस्टम होता है ना जिसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी बाहर से अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच होनी शुरू हो गई है या करीब आनी शुरू हो गई है, अब इसके अंदर ऑसिलेशन शुरू हो जाता है। आम जुबान में इसको वाइब्रेशन भी कह सकते हैं, जो मैकेनिकल चीजें होती हैं उनमें ऑसिलेशन को जो है वाइब्रेशन कह दिया जाता है, ठीक है। तो ये वाइब्रेशन शुरू हो जाती है, अब यानी क्या, अंदर कुछ हिलना शुरू हो गया, जैसे हम उर्दू जुबान में कहते हैं ना मेरे कान बजने शुरू हो गए, राइट। दिमाग के अंदर बाकायदा आपकी जो 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 नर्व्स होती हैं वो हिलना शुरू हो जाती है, यू कैन इवन फील इट, ठीक है। सर में दर्द हो रहा होता है और वो अंदर जो है ना वो सिस्टम आपका हिल रहा होता है, चल रहा होता है, ठीक है। तो अब ये तकलीफ होनी शुरू हो गई, अब तकलीफ होना शुरू हो गई और वो जो सूर की आवाज आ रही है, ये सूर की आवाज की यानी उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, क्या मतलब, मुमकिन है कि ऐसा हो कि शुरू में उसकी फ्रीक्वेंसी कम थी, अब वो फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, यानी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज जो है ना वो मैच होती चली जा रही है, ठीक है ना। जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी उस सूर की करंट फ्रीक्वेंसी से मैच होती है, रेजोनेंस पॉइंट रीच कर जाता है और जब रेजोनेंस पॉइंट रीच कर जाता है तो वो चीज जो है ना वो ऑसिलेट करना शुरू हो जाती है, हत्ता कि उसकी ऑसिलेशन बढ़ती जाती है, बढ़ती टिल द पॉइंट कि वो चीज बिल आखिर बर्स्ट हो जाती है, ठीक है, वो चीज एक्सप्लोड हो जाती है। ठीक है, हजरत ने जब ये बात करी थी सूरह वाकिया की तफसीर के बयानात के अंदर, तो फरमाया था कि हमारी फैक्ट्री के अंदर जो है ना हमें इस बात का बड़ा ख्याल रखना पड़ता था कि एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी जो है वो फैक्ट्री के अंदर जो मशीन्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी से मैच ना कर जाए। अगर कभी ऐसा हो जाता था ना तो मशीन जो है वो ब्लास्ट कर जाती थी, यानी टूट फूट जाती थी वो। ठीक है, तो इस बात जो होते थे जिनको फैक्ट्री ने हायर किया हुआ होता था वो बहुत सारे काम कर रहे होते थे, उनमें से एक काम ये भी था कि रेजोनेंस को अवॉइड करें, रेजोनेंस मीट ना हो जाए वरना बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो क्या पता कि इस तरीके से जैसे जैसे जो है वो चीजों की रेजोनेंस मीट होती जाएगी वैसे वैसे वो चीजें जो है ना वो ब्लास्ट होती चली जाएंगी। सबसे कमजोर मखलूक कौन सा, हमें तो यही समझ में आता है कि अल्लाह की सबसे कमजोर मखलूक जो है ना फिजिकली वो इंसान है। ठीक है, तो शायद सबसे पहले जो है ना वो इंसान मरेंगे, जो है वो दूसरे जानवर चरिंद परिंद ये सब, ठीक है ना, उनमें उनकी फ्रीक्वेंसी लेवल जो है वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, उनकी जो जो फ्रीक्वेंसी रेंजेस हैं वो डिफरेंट है, किसी का कुछ है किसी का कुछ है। तो बहरहाल इस तरीके से शायद हैवानात की किंगडम जो है वो ब्लास्ट होगी। हाँ, आई रेड दैट सम ब्रिजेस कोलैप्स इन द पास्ट ड्यू टू दिस रीजन, यानी ब्रिजेस की आती है जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो गाड़ियां उनके ऊपर चल रही होती है ना उनकी कुछ ऐसा एक फिनोमेना क्रिएट हो जाता है जिससे कि अगर ये मैच हो जाए ब्रिज फूट फूट करके गिर गया। ठीक है, आपने बिल्कुल सही बात फरमाई। तो अब पहले हैवान यानी जो जो एनिमल किंगडम है वो खत्म हुआ, उसके बाद जो है वो जो प्लांट किंगडम है वो खत्म हुआ, फिर उसके बाद जो है वो यानी जमादात की जो वर्ल्ड है वो पूरी खत्म होनी शुरू हुई, और बजाहिर पहाड़ से ज्यादा मजबूत मखलूक नजर आते हैं इस दुनिया के अंदर। पहाड़ों की मिसाल है कुरान, ठीक है ना, इतना मजबूत पहाड़। तो सूरह कारिया के सबसे मजबूत चीज समझी जाती है इस दुनिया के अंदर, उसकी मिसाल देकर के समझा दिया, इतनी मजबूत चीज रूई के गालों की तरह से उड़ना शुरू हो जाएगी तो फिर तुम्हारी क्या हैसियत है, जानवरों की क्या हैसियत है, वो तो उससे पहले खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो ये है नफ़खे उला। ठीक है, तो नफ़खे उला के बाद क्या होगा कि फिर उसके बहुत लंबा अरसा जो है वो यानी कोई जिंदगी नहीं होगी, हत्ता के जो रूहें थी ना जो कि आलम बरज़ख के अंदर रूहें एक अंदाज में जिंदा है, ठीक है ना, हम तो मवाती तो नहीं है ना कि ये मर गए और भी नहीं है, राइट, हम भाई कब्र के अंदर मुर्दे जो है एक तरीके से जिंदा हैं, हम उनको देख नहीं सकते, हम उनको सुन, वहां पे पूरा एक सिस्टम चल रहा है, जो अजाब वाले हैं उनको अजाब हो रहा है, जो सवाब वाले हैं वो माशाल्लाह बाकायदा मजालिस होती हैं आलम बरज़ख के अंदर कब्र के अंदर। ठीक है, तो अब वो रूहें जो है वो कब्र के अंदर जिंदा है और उनका एक बल्कि एक सर्टेन टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो उनके उनके जिस्मों के साथ भी है। ठीक है, तो अब वो रूहें जो इस सूर के साथ जो है ना वो भी बेहोश हो जाएंगी, यानी रूहों को भी मौत आ जाएगी। ठीक है ना, और उस वक्त जो है ना वो सिर्फ और रब्बुल इज्जत की जात बाकी रह जाएगी। ठीक है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत, हत्ता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को मौत दे देंगे, एक एक करके फरिश्तों को, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी मौत दे दी, इसराफील अलैहिस्सलाम को भी मौत दे दी, हत्ता के आखिर में जो मौत के फरिश्ते हैं इज़राइल अलैहिस्सलाम मौत दे दी। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला, और ये पता नहीं कितना हजारों लाखों साल का लंबा अरसा लंबा होगा, और उसके अंदर फिर अल्लाह ताला जो है वो एक मुनादी देंगे, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है, आज किसकी बादशाहत है, सवाल करेंगे जवाब देने वाला कोई ना होगा, कोई भी जवाब नहीं देगा क्योंकि कोई है ही नहीं अब इस हालत में कि वो जवाब दे पाए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जवाब खुद अता फरमाएंगे, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, अल्लाह जो के वाहिद है अकेला है और उसकी मिल्कियत है आज के दिन, किसी छोटे मोटे बादशाह की अब मिल्क हो गई। फिर उसके बाद जो है अल्लाह ताला फरिश्तों को जिंदा करना शुरू करेंगे, सबसे पहले इसराफील अलैहिस्सलाम को जिंदा करेंगे और उनको फिर से जो है वो सूर उनके पास पड़ी होगी जो भी होगा वो फिर से सूर को उठाएंगे अपने मुंह से। हदीसों में आता है कि इस वक्त इसराफील अलैहिस्सलाम सूर को अपने मुंह से लगाए हुए अल्लाह के हुक्म हैं, मुस्तकिल उनको और कोई काम ही नहीं है, बस सूर जो है ना जो लाउड स्पीकर है वो उनके मुंह से लगा हुआ है, वेट कर रहे हैं इधर अल्लाह ताला का इशारा आए इधर शुरू करो। ठीक है, तो फिर जब दूसरा अल्लाह ताला फिर उनको जिंदा करेंगे तो फिर से सूर को जो है वो अपने मुंह से लगा देंगे और फिर से फूंकना शुरू करेंगे। तो फरमाते हैं कि नफ़खा सानिया से फिर सारे मुर्दे जिंदा होकर खड़े हो जाएंगे, फिर उसके अंदर एक बार फिर फूका जाएगा, फ़इज़ा हुम बस एकदम से ये सारे के सारे जो है ना क़याम हुई खड़े हो जाएंगे, यंज़ुरून और देखते होंगे या इंतजार करते होंगे कि अब व्हाट इज नेक्स्ट। ठीक है, तो इस आयत में उसकी तस्रीह मौजूद है। ठीक है, यानी दूसरे इस आयत के अंदर तो तस्रीह हो गई कि जी दूसरी सूर की बात हो रही है, लेकिन ये जो आयत है फ़ाइज़ा नुफ़िख़ा फ़िस्सूर फ़ला अंसाबा बैनहुम, तो इस वाली आयत में लिखते हैं कि सूर का नफ़ा उला मुराद है या नफ़ा सानिया, इसमें इख्तिलाफ है यानी उलमाए किराम के दरमियान इल्मी इख्तिलाफ है कि पहले की बात हुई है कि दूसरे की बात हुई है, क्योंकि अल्फाज में ऐसी सराहत नहीं है। जब सुम्मा नुफ़िख़ा फ़ीही उख़्रा, इसके अंदर सराहत है कि भाई एक बार फिर नेक्स्ट टाइम इसके अंदर फूका जाएगा। ठीक है, यहां पर सराहत नहीं, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से जब सराहत नहीं है और नबी अलैहिस्सलाम ने भी सराहत नहीं फरमाई कि यहाँ पर पहली की बात हो रही है कि दूसरी की बात हो रही है, तो इस वजह से उलमा के दरमियान इल्मी इख्तिलाफ होना नेचुरल बात है, कोई इसके अंदर बुरी बात नहीं है, कोई बड़ाई कोई मसला। तो अब उलमाए उम्मत में सबसे पहले उलमाए उम्मत कौन है? सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम। ठीक है ना, ये पहले मौलवी हैं सहाबा कराम। ठीक है ना, अब इन मौलवियों में कुछ मौलवी जो थे वो यानी तखस्सुस एडवांस मौलवी थे, एडवांस उलमाए कराम। आजकल कोई तखस्सुस फिल फिका करता है, कोई तखस्सुस फिल अहदीस, कोई तखस्सुस फिल क़िरा करता है, कोई किसी चीज़ में तखस्सुस करता है, तो वो एडवांस मुफ्ती हजरात कहलाते हैं। ठीक है, और कुछ जो होते हैं वो बस 8 साल का आलिम कोर्स पास करके जो है वो एक नॉर्मल मौलाना बन जाते हैं, आलिम बन जाते हैं। ठीक है, तो सहाबे कराम के दरमियान भी दर्जे मौजूद थे। ठीक है, उबै बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऊंचे दर्जे के आलिम थे, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऊंचे दर्जे के, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है ये तखस्सुस फिल उलूम वाले लोग थे। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का भी ऐसे ही मुकाम आता है तफसीर के अंदर, हालांकि ये बहुत ही जूनियर थे, यानी इल्म उम्र में बहुत जूनियर थे, लेकिन इन्होंने मेहनतें कर करके सफर कर करके और मुजाहदे कर करके खूब सारा इल्म इकट्ठा कर लिया था अपने सीनियर से, तो इस वजह से ये भी जो है फिर बड़े उलमा में शुमार होना शुरू हो गया इनका भी। तो हजरत इब्ने अब्बास था, तो उनसे बरवायत इब्ने जुबैर रहमतुल्लाह अलैह मनकूल है, यानी इब्ने जुबैर रहमतुल्लाह अलैह इनके स्टूडेंट थे, उन्होंने इब्ने अब्बास से सुना और फिर आगे नकल किया कि इस आयत में उला है पहली सूर मुराद है, जबकि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला ये उम्र में भी ज्यादा थे और ये साबिकून अव्वलून सहाबा में से थे, बिल्कुल इब्तदाई जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लेकर आए थे ना लोग मक्का मुकर्रमा के अंदर, बिल्कुल शुरू में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद उन लोगों में से थे, तो जाहिर है इनका इनका दर्जा जो है वो इब्ने अब्बास के मुकाबले में बहुत ज्यादा था। तो उन्होंने फरमाया और बरवायत अता रहमतुल्लाह अलैह यही बात हजरत इब्ने अब्बास से भी मनकूल है कि मुराद इस जगह नफ़ा सानिया है, यानी एक और रिवायत इब्ने अब्बास से हजरत अता रहमतुल्लाह अलैह जो कि एक और ताबिई थे, तो उन्होंने ये कहा कि इब्ने अब्बास ने भी एक मौके पर फरमाया था कि यहाँ पर मुराद नफ़ा सानिया, तो हो सकता है किसी मौके पर उनका इज्तिहाद यह था या उनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ये नफ़ा उला के बारे में बात हो रही है, बाद में कुछ और इनके पास इंफॉर्मेशन हुई इब्ने अब्बास के पास, तो फिर उन्होंने भी अपना मौकफ चेंज करके इसको नफ़ा सानिया करार दिया। बहरहाल ये इल्मी इख्तिलाफ इस तरीके से ही उलमाए कराम के दरमियान पहले दिन से हैं और आज भी इसी तरीके से मौजूद हैं, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाले, इनको खत्म ही नहीं होना, और ये तो बल्कि उम्मत के लिए रहम इल्मी इख्तलाफ वगैरह। तफसीर मज़हरी में उसको सही करार दिया है, इसी को सही करार दिया है, यानी नफ़ सानिया वाले ओपिनियन को सही करार दिया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल ये है कि क़यामत के रोज़ एक एक बंदे मर्द औरत को महशर के मैदान में लाया जाएगा और तमाम अव्वलीन व आखिर भरे मजमे के सामने खड़ा किया जाएगा, यानी सबको सबके सामने होगा। फिर अल्लाह ताला का एक मुनादी ये निदा करेगा कि ये शख्स फुना बिन फुना है, अगर किसी का कोई हक इसके जिम्मे है तो सामने आ जाए, इससे अपना हक वसूल कर ले। यानी बाप के नाम से नस्बत होगी, ठीक है। कहीं किताबों में किसी ने लिख दिया कि माँ के नाम से नस्बत होगी, नहीं वो गलत है, माँ के नाम से नहीं पुकारा जाएगा, फुना बिन और माँ का नाम नहीं, बाप ही के नाम से पुकारा जाएगा। वहां पर भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है खाली जो के माँ के नाम से, लेकिन बाकी सब तो है ना बाप के नाम से, तो इससे अपना अपना हक वसूल कर ले। ये वो वक्त होगा कि बेटा इस पर खुश होगा कि मेरा हक बाप के जिम्मे निकल आया, ठीक है, यानी बाप ने मेरा हक अदा नहीं किया था उस वक्त, और बाप का कोई हक बेटे पर हुआ तो बाप खुश होगा कि इससे वसूल करूंगा, ठीक है ना। यानी उस वक्त बाप बेटे जो है ना वो एक दूसरे के फ्रेंड्स नहीं रहेंगे बल्कि दुश्मन हो जाएंगे। इसी तरह मियां बीवी और भाई बहन जिसका जिस पर कोई हक होगा ये मुनादी सुनकर उससे वसूल करने पर आमादा और खुश होगा, ठीक है। इस आयत मस्कूरा में आया है फला अंसाबा बैनहुम, यानी उस वक्त बाहिमी नस्बी रिश्ते और कराबतें काम ना आएंगी, कोई किसी पर रहम ना करेगा, हर शख्स को अपनी अपनी फिक्र लगी होगी। यही मजमून इस आयत का है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीह, कि जिस दिन आदमी भागेगा अपने भाई से, मिन अखी व उम्मीही व अभी, और अपनी माँ से भागेगा कि मेरी माँ जो है ना कहीं मुझसे अपना हक मांगना शुरू कर दे, ठीक है ना, यानी छुपने की कोशिश करेगी, जैसा कहते हैं ना नजरें बचाना, कि किसी के ऊपर नजर पड़ गई तो अब जो है वो पूछ लिया तो फिर मैं क्या करूंगा, तो अपनी माँ से आपको छुपाएगा, वह अभी ही और अपने बाप से छुपने की कोशिश करेगा, वह साहिबती और अपने साहिब से, यानी बीवी शौहर बीवी से बचने की कोशिश करेगा, बीवी शौहर से बचने की कोशिश करेगी, ठीक है, वह साहिबती बनी ही और अपने बेटे से बचने की कोशिश करेगा, ठीक है। यही वो दिन, यानी वो दिन जिसमें हर इंसान अपने भाई से, माँ बाप से, बीवी और औलाद से दूर भागेगा, तो वो हिसाब किताब का दिन होगा। उस दिन हुकूकुल्लाह का भी हिसाब किताब होगा और हुकूकुल इबाद का भी हिसाब किताब होगा। उस दिन से फिर हमें डरना चाहिए, हमें सांप बिच्छू से डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमें कॉकरोच से और मकड़ी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, हत्ता कि हमें काफिर से डरने की जरूरत नहीं है। ये चीजें जो है वो मोमिन को कोई खास खौफ में मुबतला नहीं करती। हाँ थोड़ी देर के लिए एक तभी खौफ हो सकता है किसी को, लेकिन वो थोड़ी देर का खौफ होता है, उसको तभी नेचुरल खौफ कहते हैं बस। लेकिन जो ईमानी खौफ, ये ईमानी खौफ जो है ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है, यानी आखिरत के हिसाब किताब का खौफ। इस खौफ से अगर कोई निजात पा गया इसी दुनिया की जिंदगी में, ही इज इन डीप ट्रबल, ही और शी इज इन डीप ट्रबल, कि आखिरत के खौफ से ये कैसे निजात में बैठा हुआ है, कैसे इत्मीनान से बैठा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसका ईमान जो है ना ये दरअसल या तो खत्म हो चुका है या ये कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है इसके ईमान के साथ, ठीक है ना। एक ईमान ना डरे, ठीक है, इस खौफ के बगैर तो गुजारा नहीं। तो महशर में मोमिनीन और कुफार के हालात में फर्क, तो आगे उन्वान बांधा और ये हाल काफिरों का जिक्र किया गया है, यानी उस वक्त आखिरत के जो काफिर होंगे ये उनकी बात हो रही है। अब आखिरत के काफिर कौन है, आखिरत के काफिर जने आपसे पूछ भी लेते हैं, पिछले दिनों खवातीन की क्लास में सवाल किया था जी आखिरत के काफिर से क्या मुराद है, आखिरत का काफिर, ये कौन होता है भाई? यहां पर फरमाया ना हजरत ने कि मगर ये हाल काफिरों का जिक्र किया गया है, तो लफ्ज काफिर की तशरीह ये आज आपके सामने करना चाह रहा है कि यहां पर काफिर से मुराद आखिरत का काफिर है, दुनिया का काफिर मुराद नहीं है, आखिरत का काफिर मुराद है। तो वो कौन होता है जी? मैंने कहा इनको माशाल्लाह याद है तो उन्होंने जवाब देने शुरू कर दिए। ठीक है, मर्दों में कोई, मर्दों से कोई जवाब आएगा तो खुवातीन के जवाब पढ़ते हैं। आखिरत का काफिर whoever dies, जिसकी मौत ईमान पर ना हो, ठीक है, जो मौत के वक्त ईमान से महरूम हो गया, ठीक है, नहीं जो आखिरत में भी इनकार कर देगा, नहीं जी नहीं, ठीक है ना, जिसकी मौत ईमान पर नहीं हुई हो वो है आखिरत का काफिर, ठीक है, जो ईमान के बगैर दुनिया से रुखसत हो गया। खातिन ने जवाब दिए कि जिसका खत्म ईमान पे हो, जिसका खात्मा ईमान पे हो वो आखिरत का काफिर हो जाए, ईमान वाले के जवाब दे रहे थे। हाँ, तो जिनका ईमान पे खात्मा ना हुआ हो वो है आखिरत का काफिर, ठीक है, फाजर नहीं, फाजर वाजर को नहीं, जो हालत ईमान में नहीं मरा हो, जिसका अंजाम कुफर पे हुआ, जिसका अंजाम ईमान पर हुआ वो आखिरत का मोमिन है, ठीक है, ना फासिक ना फाजर कोई नहीं, ठीक है ना। तो आखिरत के काफिर की डेफिनेशन क्या है? मौत के वक्त उसका ईमान नहीं था, मौत के वक्त ईमान से महरूम था, वो है आखिरत का काफिर, बेशक सारी जिंदगी मुसलमान था, है ना, बेशक सारे पढ़ता था या तफसीर की क्लास भी लेता था ना भाई, अपने आप को डराना मकसूद है ना भाई, इस वजह से हम बैठे हुए, तफसीर की क्लास पढ़ता था या पढ़ाता था कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, रात को तहज्जुदे पढ़ता था कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आखिरत में काफिर वो होगा जिसका के ईमान के मौत के वक्त ईमान नहीं था, बस ये है, ठीक है ना। क्या मतलब इसका? मतलब ये है कि डर है, कुछ भी कर रहे हो, दीन की खिदमत कर रहे हो, दीन पे को जो है वो दुनिया के अंदर फैलाने का काम कर रहे हो, है ना, औलिया की महफिल में बैठते हो, औलिया के साथ उठते बैठते हो, लेकिन कुछ खात्मा बिल खैर होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना, और अगर खात्मा बिल खैर ना हुआ तो फिर आखिरत का काफिर, ठीक है। अभी बच्चों की क्लास हो रही, आप लोगों में अक्सर सुन भी रहे थे माशाल्लाह कि इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह, है ना, कितने बड़े मुफस्सिर कुरान हैं, वली अल्लाह हैं, सब कुछ है, इतनी बड़ी बड़ी किताबों के मुसन्निफ हैं, और जब उनकी मौत का वक्त आता है तो शैतान आकर के कैसे कैसे उनको ईमान से महरूम करने की कोशिश करता है। वो मंतकी दलाइल देने वाले इंसान थे, ऐसे जबरदस्त उन्होंने तौहीद के ऊपर दलाइल दिए थे, अब शैतान आकर के कहता है कि तुम दलाइल से मुझे कन्विंस करो ना जरा कि अल्लाह है, इन्होंने एक दलील दिया, शैतान ने दलील को अपनी तरफ से जो काउंटर दलील दी ना शैतान ने, इनकी दलील जो है वो टूट गई, दलील का यानी की दलील शैतान की दलील के सामने कायम, इन्होंने दूसरी दलील दी, शैतान ने उसको भी तोड़ दिया, तीसरी दलील दी उसको भी तोड़ दिया, हत्ता के 300 से ज्यादा दलीलें इन्होंने दी, अल्लाह की वजूद की दलीलें, अल्लाह की तौहीद की दलीलें, शैतान ने हर दलील को रद्द कर दिया, ठीक है, हर दलील, और फिर उसके बाद जो इनकी निस्बत थी अपने शेख के साथ वो फिर किताबों में लिखा है कि जी अल्लाह ताला ने मामला ऐसा किया कि इनको आवाज आई कि तुम शैतान को ये कहो कि मैं बिला दलील अल्लाह को मानता हूं, मुझे किसी दलील की जरूरत नहीं है, बस ये जवाब दिया, शैतान जो है ना उस इस जवाब के ऊपर फिर उनके पास से भागा, क्या तुम्हारे तुम्हारे रब ने तुम्हें आज फिर बचा लिया। अब एक ऐसे बुजुर्ग को, ऐसे नेक इंसान को शैतान उस दिन ऐसे कोशिश करता है ईमान से महरूम करने की, शख्स जो है वो दुनिया की जिंदगी के अंदर अल्लाह वालों की दुश्मनी करता रहा, उलमा की दुश्मनी करता रहा, है ना, उलमा को बुरा भला कहता रहा, बेवकूफ कहता रहा, राइट, ये उलमा कौन होते हैं? ये वरासतुल अंबिया होते हैं, ये अल्लाह के औलिया होते हैं, उलमाए कराम भाई, अल्लाह ताला ने उनको पसंद किया है अपने कुरान के उलूम के लिए, हमें अल्लाह ताला ने पसंद किया किस काम के लिए, किसी को कंप्यूटर की खिदमत के लिए, किसी को जो है वो इलेक्ट्रिकल वायर्स की खिदमत के लिए, किसी को जो है वो मैकेनिक्स है इंस्ट्रूमेंट्स की खिदमत के लिए अल्लाह ताला ने पसंद किया, किसी को जो है वो इंसानी जिस्म की खिदमत के लिए पसंद किया। उलमाए कराम को, मशायख उजाम को इंसान की रूह की हिफाजत के लिए पसंद किया, रूह की हिफाजत के लिए पसंद किया। तो ये अगर अल्लाह के वली नहीं है, अल्लाह के दोस्त नहीं है, तो कौन है अल्लाह का दोस्त? कोई नहीं है अल्लाह का दोस्त अगर ये नहीं है तो। यही तो है अल्लाह के दोस्त और इनके साथ दुश्मनी करता है, राइट? हदीस कुदसी के अंदर ऐसे शख्स के खिलाफ अल्लाह ताला ने ऐलान जंग किया हुआ है, ऐलान जंग, राइट? जैसे सूद लेने वाले के खिलाफ ऐलान जंग कुरान मजीद में है, हदीस मुबारका में अल्लाह के वली के साथ दुश्मनी करने वाले के साथ अल्लाह का ऐलान जंग है। अब ये शख्स जब हालत सकरात में आता है, मौत इसका वक्त इसके ऊपर आता है, शैतान इसको थपकियां देने के लिए आएगा, फिर शैतान इसको लोरियां देने के लिए आएगा, या शैतान कहेगा नहीं यार ये तो मेरा दोस्त था तो मैं इसको नहीं आज मैं ईमान से बहरूम करता, ये तो सारी जिंदगी मेरी दोस्ती का हक अदा करता रहा तो चलो आज मैं ईमान के साथ इसको मरने देता हूं। नहीं, है तो ये भी बनी आदम ना, चाहे उलमा का दुश्मन था, चाहे कुछ भी करता था, है तो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से, और शैतान ने तो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के साथ दुश्मनी की कस्में खाई हुई है। उस वक्त शैतान ऐसे शख्स को आकर के बहकाने की कोशिश नहीं करेगा। तो अब ये कैसे कैसे अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमा, इसके खिलाफ तो ऐलान जंग हो चुका है अल्लाह ताला की तरफ से। मन आदली वली फआज़न्तुहु बिल हर्ब, जिसने मेरे वली के साथ अदावत करी है मैंने उसके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। ये हदीस कुदसी के अल्फाज है, ठीक है? तो शैतान साहब अपने आप को कैसे पनाह में समझ सकते हैं और अपने आप को आज हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि जी हम आखिरत के मोमिनीन में शामिल हो जाएंगे, है ना? आखिरत के काफिर में शामिल कैसे नहीं होंगे, ठीक है? तो इस वजह से मुस्तकिल का ये ईमान का खौफ जो है ना, ये मोमिन को हर वक्त लगा रहता है और ये लगना जरूरी है। तो यहाँ पर जो फरमा रहे हैं कि मगर ये हाल काफिरों का जिक्र किया गया ना, तो दिस कैन बी नाउज बिल्ला सुम्मा नाउज बिल्ला, अल्लाह हम सब के साथ आफियत के फैसले फरमा दे, लेकिन हमारी भी है कि हम यहाँ पर हों। ये जिन काफिरों का जिक्र किया जा रहा है, ही पॉसिबिलिटी है कि हम उनमें शामिल हों, ठीक है? तो फरमाया ये हाल काफिरों का जिक्र किया गया है जैसे कि ऊपर उसका जिक्र मौजूद है। आप ऐसे अक्सर खवातीन हजरात के साथ, तो जो आजकल के बड़े उलमा में से एक कुमार होते हैं इंडिया के अदवानी साहब, उनका बयान भी नकल किया है कि ये तो दौर वो है कि अंदर बड़ी तेजी के साथ लोग ईमान से खारिज हो रहे हैं, बड़ी तेजी के साथ लोग जो हैं वो दज्जाल की तरफ मुंतकिल हैं और ईमान से महरूम हो रहे हैं, मुर्तद हो रहे हैं बहुत लाखों की तादाद में। बाकायदा मुस्तकिल किताबें मौजूद हैं मुर्तद होने के वाकयात के ऊपर मुश्तमिल, बाकायदा किताबें उलमा ने लिखी हुई हैं, तो तहकीकात और रिसर्च और बयानात वगैरह में वाकयात आ रहे हैं, और जाती के अंदर, खानदानी ताल्लुकात के अंदर, दोस्त अहबाब के अंदर काफिर होने के वाकयात कितने तेजी के साथ हमारे सामने आ रहे हैं। इस वजह से तो ईमान का मामला तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हुआ है, सो बहुत ही खतरनाक मामला हुआ है। तो फरमाया कि जिक्र मौजूद है, मोमिनीन का यह हाल नहीं होगा, यानी आखिरत के मोमिनीन का यह हाल नहीं होगा, क्योंकि मोमिनीन का हाल खुद कुरान ने यह जिक्र किया है, अलहक्ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, ठीक है, कि हम मिला देंगे उनके साथ ज़ुर्रियत को, ठीक है? ज़ुर्रियत कौन? जो कि उनके खानदान वाले थे, यानी उनके अंडर सुपरविजन, बीवी बच्चे, यानी मोमिनीन सालिहीन की औलाद को भी अल्लाह ताला बशर्ते ईमान, यानी अगर उनकी औलाद जो है वो ईमान वाली थी तो इस शर्त के साथ फिर अल्लाह ताला उनको अपने आबा सालिहीन के साथ लगा देंगे, यानी जन्नत के दर्जात में पहुंचा देंगे उनको। अगर अब्बा हुजूर जो है वो ज्यादा नेक थे, ज्यादा अमाल करने वाले थे और औलाद इतनी अमाल नहीं कर सकी, तो औलाद को तो नीचे का दर्जा मिलेगा और वालिद साहब को तो बहुत ऊंचे का दर्जा मिलेगा। तो अब वालिद साहब जो है ना ऊपर जा करके कहेंगे कि अल्लाह ईमान वाली थी तो उसके बगैर तो मजा ही नहीं आया जन्नत का, ठीक है? तो अल्लाह ताला कहेंगे ठीक है औलाद आप अपग्रेड हो जाए। ऊपर वाले दर्जे में पहुंच जाएं, वाले साहब के पास, ये नहीं कहेंगे अच्छा तुम्हें औलाद याद आ रही है, जन्नत में भी आकर के हैं, तुम्हें मेरी जन्नत काफी नहीं लगती, जाओ नीचे जाओ, तुम डाउनग्रेड हो जाओ, नहीं डाउनग्रेड नहीं करेंगे, ठीक है ना, अपग्रेड करेंगे, ठीक है। अगर आखिरत के अजाब से हिफाजत के लिए दुआओं में रोना आए तो ये भी क्या आखिरत के खौफ में शामिल होगा? आखिरत के खौफ से रो रहे हैं तो फिर ये हंसी मजाक में शामिल होगा? क्या कैसे सवाल, खौफ से रो रहे हैं तो ये खौफ में शामिल नहीं होगा तो फिर किसमें शामिल होगा? हंसी मजाक में शामिल होगा, फिर क्या होगा? ठीक है, ऐसे सवाल करने का फायदा। चले आगे फरमाया कि और हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के रोज जिस वक्त महशर में सब प्यासे होंगे तो मुसलमान बच्चे जो नाबालिगी की हालत में मर गए थे वो जन्नत का पानी लिए हुए निकलेंगे, लोग उनसे पानी मांगेंगे तो वो कहेंगे कि हम तो अपने माँ बाप को तलाश कर रहे हैं, ये पानी उनके लिए है। ठीक है, यानी इतनी सारी तफसीलात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खींची है, क्या तस्वीर कशी करी है कि नाबालिग बच्चे अपने माँ बाप को तलाश कर रहे होंगे पानी ले करके ना, ठीक है, लेकिन ये सारा मामला ईमान वालों के साथ होगा। इसी तरह एक सही हदीस में जिसको इब्ने असाकिर ने बसनद सही हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला से नकल किया है, ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि क़यामत के रोज हर नस्ल या ज़ौजियत के ताल्लुक से जो रिश्ते पैदा होंगे वो सब मुनक़त हो जाएंगे, कोई किसी के काम ना आएगा। यानी मुनक़त हो जाने का मतलब ये नहीं कि अब जो है वो बीवी नहीं रही, शौहर शौहर नहीं रहा, नहीं, बीवी बीवी ही रहेगी, शौहर शौहर ही रहे, बेटा बेटा ही रहेगा, लेकिन मतलब इसका ये है कि काम नहीं आएगा, ठीक है, बजुज मेरे नसब और मेरी ज़ौजियत के रिश्ते के। उलमा ने फरमाया कि इस नस्ब नबवी में सारी उम्मत के मुसलमान भी दाखिल हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के बाप और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात उम्मत की माएं हैं, ठीक है, यानी ईमान वाला रिश्ता काम आएगा, नस्बी रिश्ते बायोलॉजिकल रिलेशनशिप्स काम नहीं आएंगी, ईमान वाली रिलेशनशिप्स काम आएंगी, बायोलॉजिकल रिलेशनशिप्स भी काम आएंगी, लेकिन जैसे ऊपर पढ़ा हमने बशर्ते ईमान, ठीक है, यानी क्या मतलब कि बायोलॉजिकल बाप था ना, वो उसको अपने बायोलॉजिकल बच्चे याद आ रहे हैं तो उनको अपग्रेड कर दिया जाएगा, ठीक है। वैसे तो मशायख ने वहां पर आइडियोलॉजिकल बाप का भी इंक्लूड कर लिया कि आइडियोलॉजिकल बाप यानी मशायख जो होंगे ना उनको अपने जो मुतवस्सिरीन होंगे जो उनके साथ जुड़े हुए थे इस दुनिया के अंदर वो उनको भी अपग्रेड करने की रिक्वेस्ट, और अल्लाह ताला उस रिक्वेस्ट को भी कबूल करके ना जो मुतवस्सिरीन थे उनको अपग्रेड कर देंगे अपने मशायख के साथ, लेकिन आमतौर पर जो है बायोलॉजिकल बाप की बात हो रही होती है, माँ बाप की बात हो रही होती है। चले शायद खुलासा ये है कि रिश्ता और दोस्ती का कोई ताल्लुक किसी के काम ना आना ये हाल महशर में काफिरों का होगा, मोमिनीन तो एक दूसरे की शफात और मदद करेंगे, ठीक है, और उनके ताल्लुकात एक दूसरे के काम आएंगे। अब वला यतसाअलून इसी आयत के जो आखिरी दो अल्फाज थे, यानी आपस में कोई किसीगा बात ना पूछेगा, मतलब बाबत ना पूछेगा, यानी मुतअल्लिक नहीं पूछेंगे क्या हुआ उसका, क्या हालचाल है उसके, क्या बना उसका, ठीक है, ये मुराद है। और दूसरी एक आयत में जो ये मजकूर है वो अक्बला बाउदुहुम अला बाउदीन यतसाअलून, यानी महशर में लोग बाहम एक दूसरे से सवालात करेंगे और हालात पूछेंगे, ठीक है, तो यहां पर है ला यतसाअलून और वहां पर है यतसाअलून, आपस में पूछेंगे एक दूसरे के मुतालिक और यहां पर है ना पूछेंगे, तो अब ये बज़ाहिर एक इख्तिलाफ नजर आ रहा है, कुरान ही की आयात के दरमियान इख्तिलाफ नजर आ रहा है, तो अब इस इख्तिलाफ को जो है वो रफा करना जरूरी है, यानी इसको जो है ना वो एक्सप्लेन अवे करना, इस इख्तिलाफ को खत्म करना जरूरी है, वरना कुरान में इख्तिलाफ ये यानी ये बंदे को कुफर तक ले जा सकता है, अगर कोई इंसान ये फैसला करके बैठ जाए कि कुरान में तो इख्तिलाफ है, आपस में एक दूसरे से टकराती है कुरान की आयतें, तो ये तो बंदे को कुफर तक पहुंचा देगा ये चीज, तो इस वजह से इस इख्तिलाफ को एक्सप्लेन करना लाजमी है। तो हजरत यहाँ पे वो हमारी बिहाफ पर ये मेहनत कर रहे हैं इसको एक्सप्लेन करने की, यही तो उलमा का काम, ठीक है, हमारा ईमान बचा लेते हैं, वरना ना करें तो हम तो मारे जाएंगे उसके डाउट में पड़, मिल जाएगा कुरान के बारे में डाउटफुल करने का। तो उलमा हमारे मोहसिन, ठीक है ना, हमारे ईमान की हिफाजत उलमा के वास्ते से अल्लाह ताला हमारी फरमाते हैं, ठीक है। यानी महशर, तो हजरत ने फरमाया कि यानी महशर में लोग बाहम एक दूसरे से सवालात करेंगे और हालात पूछेंगे। तो कई तर्जुमा है, तो इसके बारे में हजरत इब्ने अब्बास ने फरमाया कि ये कि महशर में मुख्तलिफ मौकफ होंगे। मौकफ पार्किंग लॉट के लिए भी लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो मौकफ होंगे क्या मतलब, मुख्तलिफ लॉट्स होंगे, मुख्तलिफ एरियाज होंगे, खड़े रहने की जगह। मौकफ का लफ्जी तर्जुमा खड़े रहने की जगह, ठीक है, वकूफ बल्कि रुकने की जगह मौकफ, ठीक है। तो महशर के दिन यानी जो इंसानों का हुजूम होगा ना, उसको पहले एक जगह पार्क किया जाएगा, फिर वहां से चलाया जाएगा किसी दूसरी जगह पे पहुंचा के वहां पे पार्क किया जाएगा, वहां पे कोई मामलात होंगे, फिर कहीं और पार्क किया जाएगा वहां पे, फिर उनके साथ और मामलात होंगे। तो ये सब मौकफ्स होंगे, ठीक है। तो इन्हें बात सतर्क फरमाया कि महशर में मुख्तलिफ मौकफ होंगे, हर मौकफ का हाल मुख्तलिफ होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ हो रहा है, अगले मौकफ में कुछ, अगले मौकफ में कुछ, एक वक्त ऐसा कि कोई किसी को ना पूछेगा, ठीक है। यानी एक मौकफ में आपस में कोई कम्युनिकेशन, कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही, फिर किसी मौकफ में जब उनका गलबा कम हो जाएगा तो बाहम एक दूसरे का हाल भी दरियाफ्त करेंगे, ठीक है। तफसीर मज़हरी में इस तरीके से नकल। अच्छा, अब जो है वो आगे आयत थी, फमन थकुलत मवाज़ीनुहु फऊलाइका हुमुल मुफ्लिहून वमन खफ्फत मवाज़ीनुहु फऊलाइका अल्लज़ीना खसरू अन्फुसहुम फी जहन्नम खालिदून। यानी मीजान अमल में जिस शख्स का नेकियों का पल्ला होगा वही फलाह पाने वाले हैं, और जिसका पल्ला नेकियों का हल्का रहेगा तो ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में खुद अपने हाथों अपना नुकसान किया, और अब वो हमेशा के लिए जहन्नम में रहने वाले हैं। खालिदून का लफ्ज हो गया ना हमेशा के लिए जहन्नम, ठीक है। खालिद का लफ्ज तर्जुमा बताया था आपको तर्जुमे के दौरान के हमेशगी, हमेशा रहना। तो अब हमेशा कौन रहेगा जहन्नम में, ईमान वाला हमेशा नहीं रहेगा जहन्नम में बल्कि काफिर हमेशा रहेगा, ठीक है। तो अब इससे फिर तफसील बयान करी कि इस आयत में मुकाबला सिर्फ मोमिनीन कामिनीन और कुफार का है। यानी इन आयात के अंदर सबका जिक्र नहीं हो रहा बल्कि कामिल ईमान वाले और काफिर, ठीक है, और उन्हीं के बल का और उनमें से हर एक के अंजाम का जिक्र किया गया है कि मोमिनीन पल्ला भारी होगा उनको फलाह हासिल होगी, कुफार का पल्ला हल्का रहेगा उनको हमेशा के लिए जहन्नम में रहना पड़ेगा, ठीक है। और कुरान करीम की दूसरी तस्रीहात से साबित है कि इस जगह मोमिनीन कामिलीन का पल्ला भारी होने का मतलब यह है कि दूसरे पल्ले यानी सय्यात व मासी के पल्ले में कोई वजन ही ना होगा, वो खाल। सही है। तो यहां पर ना यानी इन दो आयात में फमन थकुलत मवाज़ीनुहु फऊलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ठीक है, फलाह पाने वाले। अब ये फलाह पाने वाले का मतलब क्या कि ये कौन लोग जो के चले आपसे अगर हम पूछे कि यहां पर जो हुमुल मुफ्लिहून से आगे तो वैसे लिखा हुआ है मोमिनीन कामिलीन, ठीक है ना, लेकिन कैसे इस नतीजे पर पहुंचे कि ये मोमिनीन कामिलीन है, मोमिनीन नाकिसीन नहीं है यहां पर मुराद, ठीक है भाई। मोमिनीन नाकिसीन भी मुराद हो सकते हैं क्योंकि जन्नत में तो वो भी जाएंगे ना, तो फिर यहाँ पर मोमिनीन कामिलीन, यहाँ पे कोई हदीस तो मेंशन नहीं है कि भी इस हदीस में नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि इस जगह मोमिनीन कामिलीन मुराद है, तो हदीस को तो रेफर करके ये नहीं बोल रहे हैं ना, तो ये नकली दलील की बुनियाद पर नहीं फरमा रहे बल्कि नकली दलील ही भी इसको कह सकते हैं। तो क्या वजह है कि फमन थकुलत मवाज़ीनुहु फऊलाइका हुमुल मुफ्लिहून, मुफ्लिहून के लफ्ज से मोमिनीन कामिलीन कैसे डराइव किया, कोई someone wants to take a shot, यानी उसके एक तालिबे इल्माना सवाल हो रहा है, ये कोई थोड़ी कि आपसे तस्वीर तफसीर पूछी जा रही है कि आप तफसीर करें इसके भाई, तालिबे इल्माना डिस्कशन है सारा 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 जो हमारे मशाइख ने लिखा है, असल हक तो वही है सारा। ठीक है, तो मुफ्लिहून जो है ना ये फलाह पाने वाले, अब फलाह पाने वाला जो है जैसे स्टार्ट में है, हाँ जैसे सूरह मोमिनून जो है, तो फलाह पाने वाला जो है ना वो जहन्नुम में जा नहीं सकता, ठीक है ना, यानी वाया जहन्नुम जन्नत में जाने वाले वो कोई थोड़ी कहलाएंगे फलाह पाने वाले, ठीक है, यानी इस वक्त जो है ना वो डायरेक्ट फलाह पाने वालों की बात हो रही है, यानी कि जहन्नुम में जाएंगे हिकबा जो है वो जलते रहेंगे, जलते रहेंगे 80 साल या 160 साल या 300 कितने साल जलते रहेंगे, फिर अपने गुनाहों की सजा पाने के बाद जन्नत में जाएंगे। भाई ये तो पिट पिटा करके जन्नत में जाने वाले लोग बने, तो मुफ्लिहून जो है ये तो भाई उन लोगों की शान होती है जो कि यानी जहन्नुम को कंप्लीटली अवॉइड करते हुए जन्नत में पहुंच गए, ठीक है ना, यानी स्टेइंग क्लियर ऑफ जहन्नुम वो जन्नत में पहुंच गए, ठीक है। तो अब वी कौन लोग हो सकते हैं, ये वही लोग हो सकते हैं जो कि मोमिनीन कामिली, ठीक है, यानी इनके ईमान में गुनाहों का नुक्स शामिल नहीं था, ठीक है। तो इस आयत में फरमाया कि मुकाबला सिर्फ मोमिनीन कामिलीन और कुफार का है, अब बाकी हिसाब बाकियों का भी होगा, यानी मोमिनीन नाकिसीन का हिसाब किताब उसका आगे जिक्र आ रहा है अभी तो, ठीक है। तो कुरान करीम की दूसरी तस्वीहात से साबित है कि इस जगह मोमिनीन कामिलीन का पल्ला भारी होने का मतलब यह है कि दूसरे पल्ले यानी सय्यात व मासी के पल्ले में कोई वजन ही ना होगा, वो खाली नजर आएगा, ठीक है, यानी यहाँ पर सिर्फ उस समझने सिर्फ उन लोगों की बैलेंसिंग या उन लोगों की मेजरमेंट की बात हो रही है जो कि मोमिनीन कामिलीन, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं हो रहा कि पहला स्टेज खाली ईमान की का वजन हो रहा है और फिर दूसरा स्टेज आएगा उसके अंदर अमाल का वजन हो रहा होगा, कि इस वो वाला ऑर्डर यहाँ पे डिस्कस नहीं हो रहा, वो तरतीब यहाँ पे डिस्कस नहीं हो रही, यहाँ पर सिर्फ जो है ना वो बस उनका जिक्र हो रहा है कि दो मोमिनीन कामिलीन, बस उनकी जो बैलेंसिंग होगी तो उसका ये हाल होगा कि इधर नेकियां ही नेकियां, दाएं पलड़े के अंदर नेकियां ही नेकियां और बाएं पलड़े के अंदर जीरो, ठीक है, तो कुछ है ही नहीं वहां पर गुनाहों के पलड़े के अंदर, वो तो खाली पड़ा हुआ होगा, ठीक है। और कुफार का पल्ला हल्का होने का मतलब ये, यानी अब इस जुमले के अंदर कुफार की बैलेंसिंग की बात हो रही है, ठीक है, कि पल्ला हल्का होने का मतलब ये है कि नेकियों के पल्ले में कोई वजन ही ना होगा, बिल्कुल ऐसा हल्का रहेगा, जैसे कि कुरान मजीद में इरशाद है फला नुकीम लहुम यौमल क़ियामती वज़ना, सूरह कहफ के आखिर के, यानी हम कुफार उनके आमाल का क़यामत के दिन कोई वजन ही कायम ना करेंगे, ठीक है। ये हाल तो मोमिनीन कामिलीन का हुआ, और जिनसे गुनाह सरजद ही नहीं हुए या तौबा वगैरह वगैरह से माफ कर दिए गए, वजन आमाल के वक्त सय्यात के पल्ले में उनके नाम पर कुछ ना होगा, ठीक है। मैंने मोमिनीन कामिलीन कौन लोग, ये फरिश्ते, ये उन अजीब व गरीब कस्म के इंसानों की बात नहीं हो रही कि जिनसे गुनाह मतलब हो ही नहीं सकते, नहीं, ये आम इंसान जैसे इंसान, ठीक है, ये यानी उम्मतियों की बात हो रही है, ठीक है ना, कि उम्मतियों का उम्मतियों में ऐसे भी लोग होंगे कि जिनों जिनसे गुनाहे कबीरा सरजद नहीं होते थे, ठीक है ना, या होते थे तो वो तौबा किए बगैर चैन नहीं मिलता था उनको, फौरन तौबा कर लिया करते थे, ठीक है ना, या इवेंचुअली तौबा कर लेते थे, तो वज़ने अमाल के वक्त सय्याद के पल्ले में उनके नाम कुछ भी ना होगा, इसलिए कि जिसने तौबा कर ली तो उसके गुनाह जो है ना वो हो गए, माफ हो गए सारे के सारे। दूसरी तरफ कुफार है कि जिनके नेक अमाल भी शर्त ईमान मौजूद ना होने के सबब मीजान अदल में बेवजन होंगे, ठीक है, यानी नेक अमाल क्या मतलब, चैरिटी की होगी उन्होंने, उन्होंने जो है वो लोगों की मदद करी होगी दूसरे अंदाज से, कभी किसी गरीब को पनाह दे दी, कभी किसी यतीम को जो है वो कोई काम करवा दिए, ठीक है ना, किसी के लिए, या कोई इबादत की कोई शक्लें उन्होंने कर ली, बहुत सारी नेकी के शक्लें हो सकती हैं जो कि काफिर करता है, आज भी कर रहा है, पहले भी करते थे, ठीक है, लेकिन उनका जो है ना वो ईमान ना होने के सबब मीजान अदल में बेवजन होंगे। बाकी रहा मामला गुनहगार मुसलमानों का, जिनके नेकियों के पल्ले में भी आमाल होंगे और सईआत के पल्ले में भी आमाल। अब जो है वो तीसरे टाइप के लोगों की बात हो रही है जो कि बैन बैन के इधर भी कुछ और उधर भी कुछ। उनका जिक्र इस आयत में सराहतन नहीं किया गया, बल्कि अमूमन कुरान करीम में गुनाहगार मुसलमानों की सजा व जजा से सुकूत ही इख्तियार किया गया है। अच्छा, तो ऐसे लोगों का यहाँ पर सराहतन जिक्र नहीं किया गया। इसकी वजह शायद ये हो कि नुज़ूल कुरान के जमाने में जितने मोमिनीन थे वो सब के सब उदूल थे, आदिल उदूल, ठीक है, यानी अमूमन तो वो कबीरा गुनाहों से पाक ही रहे, और अगर किसी से कोई गुनाह हो भी गया तो उसने तौबा कर ली, तौबा से वो गुनाह माफ हो, ठीक है ना, यानी सहाबा से भी कभी कभी कुछ ऐसे गुनाह हो गए लेकिन तौबा के बगैर वो रहे नहीं, और ऐसी ऐसी तौबाएं उनकी ना, वो जो सहाबियां थी जिनसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया था, तो उन्होंने आकर के बाकायदा रजम की सजा हासिल करी, हालांकि यानी अकेले बैठ करके भी माफी मांग लेती तो तौबा तो वो भी हो जाती है, ठीक है, लेकिन बाकायदा सजा दिलवाई अपने आप को ना। उसी तरीके से एक सहाबी मर्द भी थे ऐसे कि जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से करके सजा दिलवाई अपने आप को, रजम वाली सजा, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि सहाबा को चैन नहीं मिलता था, ठीक है, वो गुनाह के साथ जो है ना वो यानी कर सकते थे, एक ऐसी तबीयत उनकी नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत से ऐसी तबीयत बन गई थी, ठीक है। तो अब ऐसे जो जो यानी जो बहुत ही कम जिनका नाम मशहूर है, बहुत ही कम यानी समझ लें कि जूनियर सहाबा में जिनका नाम आता है, उनकी जब ये हालत थी कि रजम करवाए बगैर अपने आप को उनको चैन नहीं मिल रहा था, तो जो अकाबिर सहाबा है ना, जो अशरा मुबशरा में से हैं, खुलफाए राशिदीन हैं, ठीक है, तो उनसे तो कोई तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता कि वो गुनाह करके जो है वो इत्मीनान से बैठे हैं, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता इस चीज का ना। तो चूंकि कुरान मजीद तो सहाबा कराम के ऊपर नाजिल हो रहा था ना, नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते से, ठीक है, और सहाबा कराम जो है वो अव्वलीन मुखातब थे कुरान मजीद के, तो इस वजह से यानी एक ये तौजीह बयान करी है कि भाई मोमिनीन नाकसीन का जिक्र उसमें क्यों नहीं है, क्योंकि मोमिनीन नाकसीन जो है ना उनका यानी वहां पर रेलिवेंस नहीं थी, वहां पर एप्लीकेबिलिटी नहीं थी, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल जीरो जिक्र, ठीक है ना, कि भाई बाद में जो लोग आएंगे तो उनका पता चला कोई कुरान मजीद के अंदर मेंशन ही कोई नहीं, ठीक है, तो ऐसा मेंशन तो है, और फिर हदीस मुबारका के अंदर तो बड़ी तफसील के साथ मेंशन है ऐसे लोगों का जो कि बाद में आएंगे। तो आगे फरमा रहे हैं कि कुरान मजीद की एक आयत खलकु अन व आखरा सैअन, ठीक है, ऐसे लोगों का जिक्र है, यानी इस आयत में ऐसे लोगों का जिक्र है कि जिनके नेक और बद आमाल मिले जुले हैं, मखलूत हैं, नेक आमाल भी हैं बद आमाल भी हैं, तो इनका जिक्र है कुरान मजीद में, ठीक है। तो उनके मुताबिक हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया कि कयामत के रोज उन लोगों के आमाल का हिसाब इस तरह होगा कि जिस शख्स की नेकियां उसके गुनाहों से बढ़ जाएं, ख्वाह एक ही नेकी की मिकदार से बढ़े, वो जन्नत में जाएगा, ठीक है, यानी परसेंटाइल अगर देखें तो 51% नेकियां हैं और 49% जो है वो गुनाह है, तो खाली एक का फर्क पड़ा ना, तो ऐसा शख्स जो है वो जन्नत में जाएगा। तो अब उसके ऊपर किसी भाई ने एक दफा हमसे भी सवाल, शुरू की बात है बहुत सालों पहले, तो वो एकदम बयान के दरमियान उन्होंने सवाल कर लिया, तो हम तो वैसे ही ऐसे बेकार किस्म के लोग हैं, तो हमें तो जवाब ही समझ नहीं आया, क्योंकि हम बयान के अंदर ये बात कर रहे थे जो कि हमने अपने मशाइख से सुनी थी, गुनाह जो है ना ये तो नजासत है, और गुनाहों की नजासत के साथ जो है ना जन्नत में दाखिला नहीं हो सकता, ठीक है, तो हमें इसी दुनिया के अंदर जो है ना वो तौबा करनी होगी, खत्म करना होगा, वरना इन नजासत के साथ जो है हम जन्नत में नहीं जा सकते, क्योंकि जन्नत तो पाकीज़ा जगह है, ठीक है। तो अब उन्होंने आगे से सवाल माशाल्लाह बयान के दौरान ही दिया कि ये तो फमन सकुलत मवाजीन हो फोवा फी ईशत राधिया, ये जिसके नेकी का पलड़ा भारी है, वो गुनाह भी है उसके उसके गुनाहों के पलड़े के अंदर, लेकिन नेकी का पलड़ा भारी है, वो फिर वो तो जन्नत में जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि जी वो नजासत के साथ वो जन्नत में जा ही नहीं सकते, तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान के अल्लाह ताला ने शायद की सोबत अता फरमाई, तो हमने अपने हजरत से पूछ लिया, अगली मुलाकात के अंदर पूछ लिया, हजरत ने फरमाया ये कौन सा मुश्किल बात है, जो उसके गुनाह होंगे अल्लाह ताला माफ कर देंगे, जीरो हो जाएंगे, फिर उसके बाद वो बगैर नजासत गुनाह के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह बात समझ में आ गई, बहुत ही आसान सी बात थी, लेकिन उसको बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, कभी होता है ना इंसान ब्लैकआउट हो जाता है एकदम से, ब्लैंक हो जाते हैं। तो बहरहाल तो ये जो 49% इसकी इसके गुनाह होंगे अल्लाह ताला इन गुनाहों को माफ कर देंगे, जीरो हो जाएंगे फिर, और फिर वो अपने 51% नेकियों को लेकर के जन्नत में पहुंच जाएगा। या ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अल्लाह ताला की खुसूसी रहमत किसी वजह से उसके ऊपर आ जाए और उस वक्त जो है ना वो नेकियों में तब्दील कर दिया जाए, तो जो 49 गुना थे, 49% गुना जो थे वो गुना नेकियों में तब्दील हो गए, अब उन नेकियों को लेकर के भी ये जन्नत में जा रहा है, ये भी मुमकिन है अल्लाह ताला। 51% तो नेकियां करी है ना, ठीक है ना, और ईमान तो है ना इसके अंदर, तो ये चीजें जो है वो अल्लाह ताला के यहाँ की बहुत बड़ी वक्त होती है, बहुत बड़ी बड़ा मुकाम है, शख्स जो है वो जन्नत में जाएगा। और जिस शख्स के सैयात और गुनाह नेकियों से बढ़ जाए, ख्वा एक ही गुनाह की मकदार से बढ़े, वो दोजख में जाएगा, ठीक है। मगर इस मोमिन गुनाहगार का दोजख में दाखिला तौहीर और पाक करने के लिए होगा, जैसे लोहे सोने वगैरह को आग में डालकर मैल और जंग से साफ किया जाता है, इसका जहन्नुम में जाना भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो अब ये सारे इसने नेकियां भी करी हैं, 49% तो नेकियां करी हैं ना, और 51% इसने गुनाह किए हैं, तो अब इसको जो है वो जहन्नुम में फेंका जा रहा है, डाला जा रहा है, बेशक कुछ अरसे के लिए डाला जा रहा है, यानी कुछ हजार साल के लिए डाला जा रहा है, बस उससे ज्यादा कोई नहीं, लेकिन कुछ हजार साल के आग में जलना बहुत बड़ी सजा है ये, ठीक है ना। हालांकि ईमान की हालत में इसकी मौत हुई है और नेकियां भी इतनी सारी इसने करके रखी हुई है, तो अब ऐसा मामला है, जबकि दूसरी तरफ जो है वो सिर्फ दो नेक यानी एक का फर्क है जा रहा है, ऐसा मामला क्यों होता है, ठीक है। तो ये जो होता है ना, फिर यहां पर यानी अल्लाह की हिकमत और अल्लाह के फैसले होते हैं, हमें सराहतन और एग्जैक्टली तो नहीं पता कि वहां पर किसके साथ क्या मामला होगा, लेकिन एक बात जो कि मशायख की तालीमात से समझ में आती है ना, वो ये कि एटीट्यूड जो होता है ना बंदे का, एटीट्यूड है ना, अगरचे कि उसने टेंजिबल आमाल जो हैं वो तो 51% और 49% ये मामला चल रहा है, जो उसने आमाल किए, नेकियां करी, सदके खैरात करे और इबादतें करी वगैरह, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो कि इनटेंजिबल होती हैं, कैफियात, अंदर के जज्बात, ठीक है ना। ये जो जज्बात और कैफियात होती है ना, तो इनकी बुनियाद पर जो है ना फिर अल्लाह ताला आगे के फैसले फरमा देते हैं, ठीक है ना। अच्छे जज्बात, अच्छी कैफियात, यानी आजजी की कैफियत है इसके अंदर, नदामत है, तौबा नहीं की इसने, 49% गुनाह तौबा नहीं करी, तौबा खाली नदामत को नहीं कहते, तौबा तो होता है आगे ना करने का इरादा कर लेना और जो है वो गुना गुना से बचने की तदबीर कर लेना, तब तौबा मुकम्मल होती है, और तौबा मुकम्मल हो गई तो 49% तो रही नहीं, जीरो हो गए। इस बंदे ने तौबा नहीं करी थी, लेकिन नादिम रहता था, नादिम रहता था, और औलिया से कोई इसका बोझ वगैरह का मसला नहीं था, दुश्मनी वगैरह का मसला, भाई दुश्मनी तो बहुत बुरी चीज होती है, उसके खिलाफ तो फिर अल्लाह की तरफ से ऐलान जंग हो जाता है, लेकिन दिल में कोई ऐसा एक होता है ना, बस एक हर वक्त कोई एक खामखा की एक रहना, एक तकलीफ रहना अल्लाह के दोस्तों के साथ, ठीक है ना। ऐसा इसका कोई मसला नहीं था, इसका एटीट्यूड अच्छा था ना, नखरों वाला एटीट्यूड नहीं था ना, इस अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से उसके 49% गुनाहों को माफ करके जन्नत, जबकि दूसरी तरफ बड़ी नेकियां कर रहा है, 51% जो है वो यानी 49% नेकियां करी हुई है, खाली एक गुनाह की वजह से वो जहन्नुम में क्यों जा रहा है, एटीट्यूड का कोई मसला हो सकता है, ठीक है। तो उस एटीट्यूड के मसले की वजह से अच्छा चलो जाओ तुम, जरा तुम्हारा ये एटीट्यूड है ना, ये भी जहन्नुम की आग से ठीक होगा, है ना। जब दुनिया में तुम नेकियां तो बहुत करते थे, ईमान भी तुम्हारा था अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान की वजह से हम तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में नहीं डालेंगे, लेकिन ये जो तुम्हारी अकड़ थी ना, ये अकड़ खत्म नहीं हो रही थी दुनिया के अंदर। तो अब नहीं खत्म करी तुमने अकड़ दुनिया के अंदर, तो चलो अब जहन्नुम में थोड़ा अरसा रह करके आओ, वहां पे थोड़ी अकड़ तुम्हारी निकल जाएगी। ठीक है, एटीट्यूड का बहुत बड़ा मसला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें अपना एटीट्यूड अच्छा बना, मेहनत करनी चाहिए, ठीक है, इसकी फिक्र करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ तो कम से कम मांगना, अल्लाह मेरा एटीट्यूड है वो पॉजिटिव बना दीजिए, ठीक है। कम से कम आपके दोस्तों के साथ जो है ना, मेरा एटीट्यूड है वो नेगेटिव ना हो बिल्कुल भी। नहीं, मेरा मामला इतनी नेकियां करने के बावजूद कहीं खराब, मुझे हजारों साल कहीं जहन्नुम में जल करके फिर जन्नत जाना ना हो जाए, ठीक है। एटीट्यूड इज इक्वल टू नदामत होना। हाँ, एटीट्यूड इज इक्वल टू नदामत होना, मतलब वही कि जब एक इंसान अपने होता है शर्मिंदा होता है ना, तो इसका मतलब यही है कि उसमें आजिजी तो है ना, और जिसके अंदर आजिजी होती है ना, फिर वो अल्लाह के बंदों के साथ जो है ना, फिर वो यानी अकड़ करके नहीं रहता, क्योंकि उसकी तो नजर अपने ऐबों के ऊपर है। बेशक तौबा नहीं कर रहा, लेकिन है तो नजर ना अपने अपने गुनाहों के ऊपर। जिसकी नजर अपने गुनाहों के ऊपर होगी, वो अल्लाह के नेक बंदों के साथ जो है वो यानी अकड़ के कैसे जिंदगी गुजार सकता है ना, उसके तो ओवरऑल जिंदगी की जो है वो आजी वाली जिंदगी बन जाएगी। लेकिन गुनाह से नहीं बच रहा था, नेकियां भी साथ साथ कर रहा था, तो अब ये ठीक है, अल्लाह ताला उस दिन उसको माफ कर देंगे बिलाखिर। ऐसे जाहिर है मुश्किल में तो रहेगा ना, तो कयामत के दिन जो है उसके लिए बहुत मुसीबत हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे उसने गुनाह करके रखे हुए, अर्श का साया शायद उसको नसीब ना हो, वीवीआईपी लाउंज से महरूम हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली एटीट्यूड जो है ना वो गालिब आ जाएगा, तरफ से उनके फैसले हो जाएंगे, इतने गुनाहों के बावजूद जन्नत। ठीक है जी, तो यहाँ से यहाँ पर हम अपने पास रोकते हैं। एक सवाल कहीं से आ गया खुवातीन की तरफ से कि उलमा से बोस ना मोहब्बत, ये भी गलत एटीट्यूड होगा। न्यूट्रल, हमारे एक बड़े फरमाया था कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, ठीक है, वो खैर उनकी अपनी लॉजिक थी। इज नो सच थिंग एज न्यूट्रल, ठीक है ना, कि ना उलमा से मोहब्बत ना बोस, ये नहीं है सर, ठीक है ना। ये एक एक हाइपोथेटिकल आपने एक पोजीशन बनाई हुई है, लेकिन ये रियलिटी में ऐसी पोजीशन नहीं होती, ठीक है ना। ये दिल तो क्या है, दिल बहरे मोहब्बत है, मोहब्बत ये करेगा ना, किसको बचा तू, ये किसी पर तो मरेगा। ये नहीं हो सकता कि इसके अंदर ना मोहब्बत हो नफरत हो, है ना। ये तो उसका तो काम ही है मोहब्बत करना या नफरत करना। दिल जो है ना वो न्यूट्रल रह ही नहीं सकता दिल, ठीक है। तो ऐसी कोई नहीं है जिसको न्यूट्रल पोजिशन कहा जाए, ठीक है जी। बाकी उसकी तफसील और भी बातें हो सकती है, लेकिन टाइम खत्म हो गया, इस वजह से आपके पास रोकते हैं। वाफ़ुल दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।